Y tú matas, no eres Manisa Matarino, no vas a ver.
¿Te recuerdo?
¿Te recuerdo? No. ¿Qué es lo más
genio? ¿Qué es lo más genio? ¿Qué es lo más genio? ¿Qué es lo más genio? ¿Qué es lo más genio? ¿Qué es lo más genio?
So, yeah, only two families. So, I don't know, we are expecting a couple of more students, but only one probably to understand the Hindi, no?
Yeah.
Very good. So, hopefully, I think that this comes
from.
Only one second, they make them see.
Hare Krishna.
Hare
Krishna. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchatya Desha Tarine Vancha Kalpataru Yascha Kripa Sindhu Bhayvacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, what is the conclusion?
Yeah, probably I was just about to introduce you a little bit.
Yeah.
So, I think many of you know his grace, presence, and soul. I don't know, Amit Prabhu, you or Aura, ne? So, Param, aap ne milana? Okay. Then I think Amur is Ajay Prabhu, you didn't meet. So, Prabhuji, okay. Prabhuji speaks Telugu. So, if you really need association, Krishna Prabhu, Prabhuji came. So, actually, it's very difficult to describe, you know, all good quality of Prabhuji. So, if I'll try to just read out something, he is a gifted personality because of Krishna. You can see, you can really feel how he is empowered by Krishna. So he is traveling, even if he has a little bit limitation on body limitation or whatever it is, but he doesn't care. So we would have been there, oh, I can't do anything, you know. So it's Krishna's mercy all around. So there are a lot of stories also. Prabhuji can tell his experience. We are seeing something happening that is present. Maybe I will tell you at some point. So basically, Prabhuji is a brahmacharya, as you see from the saffron dress, and he is totally dedicated, his life to Krishna. His father was, he's pretty old, so Prabhuji made me to talk to his father today. He's in death bed. Of course, he has another brother. So it's amazing, you know. So his father is so graciously speaking, and the communication between father and son was so lovely. Even if in the material world, we will not have that much close interactions. So it's something very, very amazing, very rare. And talking about Prabhuji's qualities, he has, you know, other than Krishna consciousness, he is an author, he edits, means he is also editor of Back to Godhead magazine to some extent. I don't know the much details. Plus, he has written a number of books, and, you know, it's not that easy to write a book, you know. So unless you have in-depth knowledge on the subject, he has almost a dozen books. I think I have kept them, 10 of them. And in one of the occasion or two of the times, Amit Prabhu and myself, Kush Prabhu and team, we went and showed Prabhuji's book. So you can, when you have time, you can go through. But I will just read a few of the Prabhuji's, excellent, work in the field of Krishna consciousness, and his travel all around the world, to educate us in the Vedic knowledge. So I will read something for you quickly, and we are already running late because it's a working day. And before coming, so people started going, thought of, because children's education and other things. So obviously kids will not get up early, but we will see how fast we can grasp something today. And by the way, whatever we had, this meal, get together tomorrow, that discourse in Kusprav's home, because of Prabhuji, some urgent preoccupation that moved to sort of Friday, that would be still better. So hopefully we will have a bigger attendance. We have 2-3 families didn't turn up because of some problem in office and other stuff. So coming back to
that's okay, Prabhu.
Prabhu, just 1 second. Yeah, I will read something. So, Chaitanya Prabhu is a mentor actually. He can teach, you can feel confident to ask any questions confidentially. So, or he can groom you if you are so interested. And by the way, one devotee, his name is Arpan Prabhu, he came once here. He saw and he became devotee. They are nice to meet Prabhu also. He's coming 5 hours all the way to see Prabhuji. So it's amazing, how you take it, how serious you are in your devotional path. And as he's a monk, he's a good speaker, which you will come to know. He has authored 25 books. So on applied mindfulness and a purpose of living, why we are in this world. So author of 3500 daily inspirational meditations on Bhagavad Gita. He is an invited speaker to TEDx, World Peace Conference, UNESCO, Intel, Google, Microsoft, Salesforce, Stanford, and Princeton, Yale, Harvard, Massachusetts, and Cambridge. So, there are a lot of things, these are the highly rated institutions, they invite really very high rated speakers. So you can imagine. So let us utilize our time today to learn something from Prabhuji, even if working day. You are not going to lose anything. We just see immediately how we are affected, but we don't see what the benefit in future. So Prabhuji has given 400 talks across 100 cities in 4 continents. And he moves around a lot each year with whatever limitations he has, he doesn't care, So whenever I see Prabhuji, it gives some inspiration. To me, and hopefully we will take something today home and contemplate on that. So let us welcome Prabhuji once again and welcome all of you this evening, and chant Hari Bol 3 times, and we'll welcome Prabhuji, then we'll start the program. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Who remembers the topic?
Hare Krishna. So, happy to be here amongst all of you today. And today this is a sacred month of Kartik going on, which is a very special occasion. And in this month we sing the Damodar Ashtakam. It's a special set of prayers composed for glorifying Krishna. So, I have been taking a series of talks on the Damodar Ashtakam. So there are 8 verses, so one talk per each verse. So I'll speak today on the 4th verse in the Damodar Ashtakam, and I'll talk it based on the theme of how Krishna is Krishna's greatest blessing. Now as we go over the words first, it is Varam Deva Moksham Na Moksha Vadhimva Na chanyam vrune ham vareshadapiha idam teva purnatha gopal balam sadame manasya virashtam kimanyai. So the devotee Satyavrat Muni is praying that that you, O Lord, are capable of giving any and every kind of benediction. You can give happiness in this world, you can give liberation beyond this world. But whatever benediction you can give, I don't want any of those. What I want is, I simply want to meditate on your attractive form. Idam deva purnatha gopala balam. Your beautiful form as a cowherd boy. Sadame manasya virashtam ki manyai. Let me always remember that form. So all of us.
Probably can I speak in Hindi? I forgot to tell you.
Okay. Okay. How many of you prefer Hindi?
All.
Sorry?
Any language is fine.
Oh, Hindi.
Yeah. Four,
okay.
Five.
Okay. Hindi. Okay. Okay. Fine. Everybody understands it, isn't it? ठीक है. तो आज हम दामोदर लीला पे चर्चा करेंगे और दामोदर लीला में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे किस तरह से भगवान ही भगवान के सबसे बड़ी भेंट है, भगवान ही भगवान के सबसे बड़े आशीर्वाद है. यह बहुत ही तो अभी हम सब दुनिया में अलग अलग चीजें चाहते हैं, कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं और उन सब की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं. और जब इस तरह से प्रयास करते हैं तो कभी कभी हमें महसूस होता है कि हमारी शक्ति से, हमारी ही शक्ति से केवल हम हमारी इच्छाएं या हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं. और तभी हमसे बड़ा कोई है जो हमें मदद कर सकता है क्या, उसके बारे में हम जांच करते हैं और तब हम भगवान के बारे में कुछ जान सकते हैं. तो अभी बहुत से लोग जो भगवान में उनकी रुचि होती है इसलिए होती है कि भगवान मुझे क्या दे सकते हैं. भगवान में कोई रुचि नहीं है, भगवान मुझे क्या दे सकते हैं वो रुचि होती है. इसका कई बार ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने संशोधन किया है कि अगर आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पे कुछ खरीदते हैं और वहां पे जो चेक इन काउंटर पे कोई अटेंडेंट बैठा हुआ है और फिर वो आपका लिस्ट देते हैं जो खरीदा हुआ है, आप कार्ड लेते हैं अपना और फिर वो आपको रसीद देते हैं. तो जब ये चल रहा होता है तो कई क्या हुआ, जब आप अपना कार्ड देते हैं या आपने कुछ लिस्ट देते हैं और उसके बीच जब वो वापस करते हैं तो वहां पे जो व्यक्ति है वो बदल देते हैं मनोवैज्ञानिक. मतलब वहां पे एक एक जवान व्यक्ति बैठा होगा, उसकी जगह पे उस थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आ जाएगा और लगभग 90% लोग देखते भी नहीं बदल गया व्यक्ति, क्योंकि क्या है उनको उस व्यक्ति से परवाह नहीं है, वो व्यक्ति मुझे जो चाहिए देता है कि नहीं. अगर मान लीजिए हम पर्ची देते हैं और फिर वो हमको हमारा बिल देते हैं, अगर जो अपेक्षा के अनुसार वह कार्य करते हैं तो फिर हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते. अगर वो अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं करते तो फिर शायद लोग ऐसे पर्ची दे भी रहे हो तो भाई अपने फोन पे बात देख रहे हो, कुछ सोच रहे होगे और फिर वो अगर देते नहीं है कुछ समय लग जाता क्या हो गया, फिर उसके ओर देखते हैं. तो उसी ये जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल इंटरेक्शन, कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करना है, मैं आपको ये देता हूं आप मुझे ये दो. तो अधिकांश लोगों की जो भगवान से भी संबंध होता है वो इसी तरह पे, इसी स्तर पे होता है कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, कुछ व्रत करूंगा, कुछ सेवा करूंगा और तुम मुझे ये दो. और इस आदान प्रदान में भगवान कौन है इसमें कोई रुचि नहीं होती है. और जब वो व्यक्ति जैसे हम चाहते हैं शॉप में जैसे हम चाहते हैं वैसे अगर वो व्यक्ति नहीं करता है तो फिर अरे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हुआ ये, कौन है ये व्यक्ति, ऐसे क्यों कर रहे हैं. तो उसी तरह से भगवान जब कृष्ण लीला में प्रकट होते हैं तो जैसे हम अपेक्षा करते हैं वैसे भभगवान कार्य नहीं करते और तभी व्यक्ति को सोचना पड़ता है ये क्या है, कौन है ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं. तो साधारणतया अधिकांश धर्मों में ऐसे भाव होता है कि भगवान परम पिता है और हम सब उनके संतान हैं, हम सब उनके सेवक हैं। तो ये साधारण संबंध है आत्मा का और भगवान का, हम सबका और भगवान का। पर इस लीला में हम देखते हैं कि यह संबंध बिल्कुल उल्टा हो गया, कि भगवान एक पिता के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान एक बच्चा बन गए। तो ये कैसे संभव है? यह समझने का रहस्य जो है, यह समझने के लिए हमें तत्वज्ञान पार्श्वभूमि के रूप में चाहिए। तो ये श्लोक है दामोदर अष्टकम, उसमें हम आठ अष्टकम है तो आठ श्लोक आते हैं, उसमें ये भाव है। सबसे पहले हमको बताया जा रहा है कि आप में से कितने लोगों को पता है ये दामोदर अष्टकम? किसी को पता है? तो बताए तो इनको पता है, आप मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ हम ऑफर करने वाले लैंप आज कुछ बाद में यहीं पे या ऊपर यहीं पे, तो अगर शीट से हमारे पास तो फिर दे दिए, हम पढ़ सकते हैं चाहिए तो। तो ये पहला श्लोक है जो हम गाएंगे नहीं, अभी हम सिर्फ रिसाइट करेंगे, तो उसके पीछे आप मेरे भी कर सकते हैं। तो नमामीश्वरम सच्चिद आनंद रूपम, पहला श्लोक जो है नमामीश्वरम, मैं प्रणाम करता हूं किसको? ये ईश्वर है। और कौन है ये ईश्वर? ये ईश्वर ऐसे है सच्चिदानंद रूपम, ये दिव्य है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यद्यपि ये बालक लग रहे हैं पर ये बालक नहीं है, ये परम ईश्वर है। तो कृपया आप मेरे पीछे, हम एक एक लाइन बोलेंगे तो मैं उसका अर्थ बताऊंगा, आप मेरे पीछे वो लाइन दोहरा सकते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो यहाँ पे ये भगवान का रूप है वो कैसा है? दिव्य है, सत चित आनंद है। हमारा शरीर होता है वो क्या है? असत अचित निरानंद होता है। हमारा क्षण जो है, शरीर जो है क्षण भंगुर है, और एक शरीर में कुछ इतना नहीं, आत्मा चले जाएगा तो शरीर निकम्मा हो जाता है और शरीर इतने सारे दुखों का कारण होता है। तो भगवान का शरीर बिल्कुल विपरीत है। तो हम ये बाह्य दृष्टि से नहीं देखना है, यह वो याद दिला रहे, भले ही ये छोटा सा बच्चा जैसे लग रहा है पर ये बच्चा नहीं है, यह वे कौन है? ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर है, और मैं उनको प्रणाम करता हूं। पर ये भगवान का, भगवान को समझना होता है तो दो चीजें समझनी होंगे, उनकी उनकी महिमा और उनकी मधुरता, गॉड्स ग्रेटनेस एंड गॉड्स स्वीटनेस। तो ये भगवान की महिमा है, ये पहले दो दो लाइनों में ही बता के उसको खत्म कर दे लगभग। और ये संपूर्ण श्लोक जो है वो भगवान की मधुरता के बारे में बता रहे हैं। तो यह परम पुरुषोत्तम भगवान है, पर या क्या कर रहे हैं? लसत कुंडलम गोकुले राजमानम, तो वो उन्होंने कुंडल पहना हुआ है। जो कुंडल पहना हुआ है वो क्या है? लसत, वो बड़ा ही आकर्षक है। अरे आकर्षक क्यों है? क्योंकि भगवान दौड़ रहे हैं। जब हम कुछ पहनते हैं तो, और पहन के अगर दौड़ रहे होते तो वो चीज भी हमारे साथ दौड़ती है, तो वो हिलती है। तो ये जो हिल रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है जैसे वो हिल रहा है, तो लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, जो गोकुल धाम है, जो वे भगवान का धाम है। भगवान आध्यात्मिक जगत में वो उनके उनके सबसे प्रिय जो जानवर है वो कौन है? गाय। तो अभी जो गाय है उनके साथ वो खेलते हैं, तो उनके जो ना धाम है उनका नाम है गोकुल, और गोकुले ब्राजमानम। तो गोकुल धाम में ये एक बड़े ही ज्वलंत रूप से प्रकट हुए हैं और गोकुल को चमका रहे हैं, गोकुले ब्राजमानम। तो अभी कोई भी छोटा सा बालक होता है तो बड़ा आकर्षक होता है, सब लोग जो होते हैं बच्चे से आकर्षित हो जाते हैं, पर कुछ बच्चे, सब बच्चे आकर्षक होते हैं एक तरह से, पर कुछ कुछ बच्चे बहुत ही आकर्षक होते हैं। तो ये जो छोटा बालक है बहुत ही आकर्षक है। और फिर क्या क्या हो रहा है, ये भाग क्यों रहा है? यशोदा भी लोक लाधाव मानम, तो वो यशोदा के भय में भाग रहा है। यशोदा भगवान की माँ है। अभी कोई पूछ सकता है भगवान की माँ कैसे हो सकती? भगवान तो सबकी माता पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये प्रसिद्ध प्रार्थना है, उसमें बताते हैं कि हे प्रभु आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भ्राता हो, आप ही मेरे बंधु मित्र हो, आप ही मेरी धन संपत्ति हो, आप ही मेरी विद्या हो, हे प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हो। तो भगवान सबके माता पिता है, तो भगवान के माता पिता कैसे हो सकते हैं? तो यह है लीला। लीला मतलब भगवान एक तरह की नाट्य है, भूमिका करते हैं, एक नाटक रचाते हैं। पर जब नाटक बोलते हैं तो उसको क्या होता है, उसको उसे भाव होता है मिथ्या का। पर ये मिथ्या नहीं है, ये परम सत्य है कि भगवान आध्यात्मिक जगत में सिर्फ अपना ऐश्वर्य दिखाकर मैं भगवान हूं तुम सब आके मेरे सामने प्रणाम करो, वो उसमें वो रुचि नहीं लेते हैं। भगवान सब लोगों के न्यायाधीश बनने में कोई रुचि नहीं रखते हैं, वो करना पड़ता है, करते हैं वो, पर भगवान का भी एक व्यक्तिगत जीवन होता है। मेरा एक मित्र है, वो अभी बड़े न्यायाधीश बने हैं भारत में, तो बता रहे थे मुझे कि अगर उनको भी न्याय के प्रति बहुत बड़ी रुचि है, उसे जोश है उनके लिए, तो पर फिर भी कहते हैं कि मुझे जिंदगी भर सुबह से शाम बस इतना ही न्यायाधीश का काम करना पड़े तो फिर ये मैं तंग आ जाऊंगा। न्यायाधीश की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। तो वैसे ही भगवान न्यायाधीश उनके लिए एक छोटी सी भूमिका है, भगवान का व्यक्तिगत जीवन होता है। और वो व्यक्तिगत जीवन गोकुल धाम में, गोकुल वृंदावन में है। और वो जो वृंदावन है वहां पे भगवान अपना भगवत तो नहीं दिखाते, वहां पे भगवान क्या करते हैं, वो अपनी मधुरता दिखाते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा बहुत ही अमीर व्यक्ति भी होगा, सो भगवान वहां पे कोई बड़ा अमीर व्यक्ति भी होगा, तो वो अमीर व्यक्ति मान लीजिए अपने मित्रों या अपने रिश्तेदारों के साथ है, तो फिर तभी वह शायद एक नाटक करता है और उस नाटक में कहता वो एक भिखारी बन जाता है और वो कहता है कि मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, वास्तव में उसी दिन 3 बार खाया है। फिर क्या है, वो एक नाटक है। और जब इस तरह से वैसे नाटक करते हैं तो फिर जितना अच्छी तरह से नाटक करते सबको आनंद आता है। और नाटक का आनंद तभी आता है जब जो नृत्य करने वाले हैं, नृत्य देखने वाले, जो नाट्य करने वाले, नाट्य देखने वाले, वो सब उसमें लीन हो जाते हैं, भाव उसके भाव अपना लेते हैं। तो भगवान भी जब लीला ऐसे क्यों करते हैं, वो एक छोटे से बालक बन जाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो सब प्रकार के संबंधों का रसास्वादन करें और वो हमें भी सब प्रकार के संबंधों का रसास्वादन कराए। तो अभी हम सबके अलग अलग रिश्ते होते हैं कि हम शायद माता पिता है, हम सब भाई बहन है, हम पति पत्नी है किसी के, हम किसी के बेटे बेटियां हैं, हम किसी के मित्र हैं। तो अभी हर एक रिश्ते में एक प्रकार का आनंद आता है, एक प्रकार का रस होता है। जैसे हम भी अलग अलग रस चाहते हैं तो वैसे भगवान भी अलग अलग रस चाहते हैं। और इसीलिए भगवान क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो एक माता का प्रेम अनुभव करें। और ऐसे भक्त भी होते हैं जो उन्हें अपने एक संतान के रूप में प्रेम करना चाहते हैं। यद यद्धिया तुरुगा यविभावयंती तत्तद्वपुः प्रणीयसे सदनुग्रहाय। कि यद यद्धिया, जहां जहां जिस तरह से भक्त भगवान को जिस रूप में पूजना चाहते हैं, भगवान उस प्रकार का रूप प्रकट करते हैं। यह भगवान की परम कृपा है। और इस तरह से भगवान क्या करते हैं, एक छोटे बालक का रूप लेते हैं और उस बालक के रूप में वो लीला करते हैं। लीला मतलब ये एक नाटक है, पर नाटक मतलब ये मिथ्या नहीं है, ये परम सत्य है। क्योंकि परम सत्य क्या है, परम भगवान ही परम सत्य है, पर भगवान भी प्रेम चाहते हैं, और प्रेम के लिए जो भी जरूरी है वो भगवान करते हैं। और इस तरह से ये वृंदावन में लीला हो रही है। तो पाश्चात्य देशों से जब 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में लोग आए थे, पाश्चात्य लोग, तो उन्होंने वो वृंदावन मथुरा के इलाके में गए, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में गए, और कई जगह पे उनको दीवारों पे ये चित्र दिखे कि शिल्प दिखे, छोटा सा बालक है और उसका मुंह में कुछ सफेद लगा हुआ है और उसका हाथ एक मटके में है, और उन्हें पूछा ये क्या है, ये भगवान है। अभी पाश्चात्य धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में के धर्म भगवान की संकल्पना होती है कि बहुत ही गंभीर वृद्ध व्यक्ति, लंबी दाढ़ी, और वे बादलों पे बैठे हुए हैं, और जो भी पाप करते हैं उन पे बिजली धार देते हैं और वो नरक में भेज देते हैं, ऐसी संकल्पना है। छोटा बालक, ये भगवान, ये क्या कर रहे हैं? तो वे माखन चुरा रहे, तो भगवान चोरी कर रहे हैं। भगवान तो सब लोगों को सही मार्ग पे लाते हैं। अभी एक कमांडमेंट है बाइबल, दाउ शैल नॉट स्टील, आप दूसरों की संपत्ति छीनो मत। तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं, भगवान खुद चुरा रहे हैं। वो चुराना भी है तो सोना चांदी भी चुरा रहे, मक्खन चुरा रहे, तो मक्खन चुराने का क्या फायदा है? तो ये जो कृष्ण की संकल्पना है भगवान की, ये देखकर कई पाश्चात्य लोग थे, वो क्या हो गया, उनका दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया, इंटेलेक्चुअल शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या है ये कैसे भगवान है? दिस इज अ सबवर्सिव नोशन ऑफ डिविनिटी। ये ऐसे है, भगवान की संकल्पना है, ये बहुत ही अद्भुत है। शायद हम सबके संस्कृति में हम बचपन से सुन रहे हैं, इसीलिए हमें ये इतना अद्भुत नहीं लगता है, पर वास्तव में अगर सोचेंगे कि जो भगवान परम पुरुषोत्तम है, जो परम शक्तिशाली है, वह छोटे बालक क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वे प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, और वे चोरी क्यों कर रहे हैं? वास्तव में सब कुछ संपत्ति भगवान की है, सर्वलोक महेश्वरम, पर वो चोरी इसलिए करते हैं कि साधारणतः कैसे होता है, हर कार्य में जब विरोध होता है तो उसमें कुछ रोमांच आता है, कुछ एक्साइटमेंट आता है। कुछ मान लीजिए अभी क्रिकेट मैच चल रही है, अगर एक टीम बहुत ही अच्छी है और दूसरी टीम बिल्कुल खेलना नहीं आता है, उसके सामने कुछ है ही नहीं, अगर ऐसे दो टीमों में मैच होगा तो क्या होगा, किसी को देखने में कुछ रुचि नहीं आएगी। अगर दोनों टीम बराबर के हैं तो फिर क्या होता है, एक टीम जीतना चाहता है, दूसरी टीम विरोध करती है, तो जब विरोध होता है तभी थोड़ा रोमांच आता है, थोड़ा एक्साइटमेंट आता है, और विरोध नहीं है तो सब कुछ क्या पता है क्या होने वाला है। अगर कोई कादंबरी पढ़ रहे, कोई ग्रंथ पढ़ रहे, कोई मूवी देख रहे, अगर आपको पहले से पता है पूरा स्टोरी क्या है तो फिर ठीक है, लगा क्या देखना है। तो क्या होता है, जब भगवान क्या करते हैं, उनके और उनके माता के संबंध में कुछ रोमांच लाना चाहते हैं, कुछ एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं। अभी माँ, उनकी माँ सीधा उनको माखन खिला सकती है, पर वो माखन नहीं खाते हैं, कृष्ण चुप के जाके कुछ चोरी करते हैं, कुछ नटखट करते हैं, और ऐसे नटखट करके क्या होते हैं, कोई भागते हैं, कहीं पकड़ने का प्रयास करते हैं उनको माँ, कहीं बच जाते हैं, कहीं पकड़े जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके उस संबंध में अलग अलग प्रकार के रस आते हैं। तो भगवान चोरी करते हैं वो अनैतिक नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनकी ही संपत्ति है, पर वो चोरी इसलिए कर रहे हैं कि वो केवल संबंध में और रस आ जाए। और फिर माखन क्यों चोरी कर रहे हैं, चोरी करना है तो कुछ और चोरी कर सकते हैं, तो क्या छोटा बालक है। अभी छोटे बच्चे जो होते हैं वो उपनिषद कहते हैं वो अन्नमय कोश में होते हैं। अन्नमय कोश मतलब क्या, कि ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस इज पोटेंशियल फूड, कि सारा जो सब चीजें जो है, छोटा बालक होता है, नवजात शिशु होता है, वो विश्व का अनुभव अपनी जिह्वा से करता है, जो भी मिलता है वो अपने मुंह में डालता है, अपनी उंगली मुंह में डालेगा, अपना पैर मुंह में डालेगा, कोई खिलौना मुंह में डालेगा, जो भी चीज मुंह में डाल के वो अनुभव करता है। तो क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए कुछ खाने में स्वादिष्ट मिल जाएगा तो बड़ा मूल्यवान होता है, छोटे बच्चे के लिए सोना चांदी वो क्या है कुछ। तो कृष्ण क्या चाहते हैं, किस तरह छोटे बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, और एक बालक के लिए क्या है, स्वादिष्ट अन्न बड़ा मधु बड़ा अच्छा लगता है उसको। और खास करके जो माखन है वह यशोदा माई और गोपियों की प्रेम का एक मूर्तिमान रूप है। उन्होंने बड़ी मेहनत करके मंथन करके जो गायों का दूध था उससे माखन बनाया है। जब वो माखन होता है बड़ा कोमल होता है, तो उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय का मंथन होता है। जब हृदय का मंथन होता है तो फिर हृदय बड़ा कोमल हो जाता है, मधुर हो जाता है, और फिर भगवान आके वो हृदय को चुरा लेते हैं। तो जो माखन चोर है भगवान, वो वास्तव में एक तरह से हृदय चोर है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ इस लीला में कि भगवान ने नटखट किया है और वो भाग रहे, तो जो भाग रहे तो यशोदा माई उनके पीछे भाग रही है, और कृष्ण भयभीत हो गए और भय के कारण भाग रहे हैं। पर क्या हो गया, आखिरी जो लाइन है पहले पंक्ति में, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, कि यशोदा उनसे और तेजी से तेज भागती है और उनको पकड़ लेती है। साधारणतः कोई भगवान को नहीं पकड़ सकता है, भगवान सबको पकड़ते हैं। अगर कोई ट्रैफिक में कोई रो व्यक्ति जो रफ्तार है उससे ज्यादा आता है, तेजी आता है, तो क्या होता है, तुरंत पुलिस की कार आ जाती है। और भी साधारण नागरिकों के लिए क्या है, पुलिस के कोई नियम होते हैं, पर अगर कोई पुलिस की गाड़ी है और वो किसी गुनहगार को पकड़ रही है तो उनको स्पीड लिमिट नहीं होता, वो कितने भी स्पीड में जा सकती है। तो अभी वो पुलिस की कार देख के व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं, पीछे मैं क्या किया, क्यों आ रहे मेरे पीछे। पर अगर मान लीजिए अभी पुलिस भाग रहे और कोई उनके पीछे जा रहा है, ये क्या हो रहा है अभी, पुलिस भाग रहे, किसने पुलिस को डरा दिया अभी। तो भगवान के भय में सब लोग रहते हैं। तो बाइबल में कहा गया कि फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, कि भगवान का भय जो है ये ज्ञान बुद्धि की शुरुआत है। जिस व्यक्ति में भगवान का भय नहीं है उस व्यक्ति का सबको भय होना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान का भय नहीं है तो वो व्यक्ति को नैतिक अनैतिक की कोई परवाह नहीं है, उसके अंदर कोई विवेक नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है, उसे दूर रहना चाहिए। तो साधारणतः सबको भगवान का भय होता है, पर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भगवान को भय हुआ है और भगवान भाग रहे हैं, और न केवल भाग रहे हैं भगवान को पकड़ा गया है। तो ये कैसा पूरा जो साधारणतः संकल्पना है भगवान की उसके पूरा विपरीत है, सर्वार्थान विपरीतांश्च, ये क्या हो रहा है। तो अभी अगले श्लोक में ये लीला का वर्णन होता है। तो इसमें 8 श्लोक है, इसमें 2 श्लोकों में लीला का वर्णन है, और फिर आखिरी 6 श्लोकों में जो है लीला का विश्लेषण है, उसका विस्तार किया गया है, क्या उसका क्या महत्व है। तो दूसरा जो श्लोक है इसमें, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं रुजंतम, तो भगवान क्या कर रहे हैं, अभी रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, रुदंत मुहुर रो रहे हैं, मुहुर बार बार रो रहे हैं, रुदंतम, और न केवल रो रहे हैं, नेत्रम उन्नेत्रम उनके आंखों से क्या हो रहा है, आंसू आ रहे हैं, युग्मम रुजंतम, और जब आंखों आ रहे हैं आंसू आ रहे हैं तो क्या है, अपने हाथों से वो आंखों पोछ रहे हैं। कारम्बोज उनके जो हाथ है वो कमल के समान है, कारम्बोज युग्मेन सातंक नेत्रम, तो अभी नेत्र आंखें क्या है उनमें कैसे है, आतंक है। अभी आतंक ये शब्द आजकल की दुनिया में आता है आतंकवादियों के साथ, तो अभी कोई आतंकवादी यहां पे सब डर जाएंगे। आतंक मतलब ना कि भय नहीं, कि बहुत ही बड़ा भय, एक है इंग्लिश में फियर कहते हैं, दूसरा है टेरर। तो टेरर मतलब जो होता है बहुत ही बड़ा भय होता है। तो यहां पे ऐसे बताया कि ना पिछले शो में बताया कि भय है, तो कृष्ण जब भाग रहे थे तो भय था उनके, मेरी मां मुझे पकड़ लेगी, पर अभी जो पकड़े गए हैं तो अभी भय बढ़ गया, क्या हो गया है वो आतंक बन गया है और सातंक नेत्र, वो कृष्ण नीचे देख रहे हैं फिर ऊपर देख रहे हैं, क्या क्या मेरी माँ सही में क्रोधित है, कितना कितना क्रोध है, क्या करने वाले अभी। तो यशोदा जो होती है वो अभी इतनी क्रोधित क्यों है, क्योंकि एक तरह से उनको एक माँ का, यशोदा को माँ का, माँ की चिंता है। कैसे कि वरी इज अ पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ बींग अ मदर। जब कोई माँ हो जाता है तो क्या होता है, अपने बच्चे की चिंता करना यह एक स्वभाव ही होता है, स्वाभाविक है वो एक तरह से। तो यशोदा भी चिंता कर रही है, यशोदा क्या चिंता कर रही है कि ये मेरा छोटा बालक है, ये भी इतना नटखट बन रहा है, चोरी कर रहा है, अभी तो आसपास चोरी कर रहा है। पर यशोदा को तब से चिंता है कि अगर ये इस तरह से चोरी करते रहेगा तो फिर अगर जब बड़ा हो जाएगा, इसका नाम ऐसे बन जाएगा चोरी करता है, तो फिर बदनाम हो जाएगा वो, और फिर बदनाम हो जाएगा तो फिर कोई पिता अपनी बेटी मेरे कृष्ण को शादी के रूप में देगा नहीं। और फिर अभी कृष्ण छोटा बालक है पर यशोदा कृष्ण के विवाह की चिंता कर रही है, और उसके कारण वो सोच रही है कि कृष्ण का क्या होगा आगे। इसीलिए थोड़ा माखन चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बार बार वो चोरी करके नटखट करके वैसा अगर उसका नाम बदनाम हो जाएगा तो क्या होगा, वह चिंता है उसको। और कृष्ण को ये समझ में, कृष्ण ये इतनी क्रोधित क्यों हुई है और क्या होगा मेरा, अभी वो भय हो रहा है। सातंक नेत्रम, और अभी क्या हुआ, दोनों दौड़ रहे थे मतलब कृष्ण भाग रहे थे, यशोदा उनके पीछे भाग रहे थे। तो जब हम भागते हैं काफी तो क्या होता है, हमारा सांस तेज हो जाता है। तो अभी दोनों रुक गए हैं, पर दोनों कृष्ण जो है अभी तक उनका सांस बहुत तेज है। तो मुंह श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ,
मुंह श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ,
वो उनका सांस बहुत तेज से हो रहा है और उनका जो गला है अभी न केवल छाती ऊपर नीचे हो रहा है, बाहर अंदर आ रहा है पर ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो उनके गले में तीन लकीर आ गई है। भी अलग अलग संस्कृतियों में सौंदर्य के अलग अलग संकल्पनाएं होती है। कुछ संस्कृतियों में होता है कि किसी का नाक बड़ा है तो सौंदर्य माना जाता है, किसी का नाक छोटा है तो सौंदर्य माना जाता है, कुछ आंखें बड़ी है तो वो सुंदर मानी जाती है, आंखें छोटी है तो सुंदर मानी जाती है। तो अलग अलग प्रकार सौंदर्य की संकल्पना होती है। तो प्राचीन भारत में अगर किसी के व्यक्ति के गले में तीन लकीरें आती है तो वो एक सौंदर्य का लक्षण मानते हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि कृष्ण भयभीत हो गए हैं पर भय की स्थिति में भी वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, यह बड़ा विलक्षण है। मान लीजिए किसी को खौफनाक सपना आ गया है और फिर वो उठ के दौड़ के अपने कमरे से बाहर आते हैं, किसी और के पास आते हैं, तो जब वो इस तरह से उनके पास सारे बाल बिखरे होते हैं, सारे वस्त्र इधर उधर हो गए हैं, तो अभी साधारण तो भय में होता है तो कोई सुंदर नहीं लगता है। कोई कभी कभी लोग कहते तो कोई क्रोधित हो जाता है तो तुम क्रोध में बड़े सुंदर लगते हो, तो कभी कभी क्रोध भी सुंदर लग सकते हैं, पर साधारण तो कोई नहीं कहता भय में तुम सुंदर लगते हो। पर भगवान इतने दिव्य है, इतना विलक्षण है वो, कि जब वो भयभीत भी है तो क्या है, वो सुंदर लग रहे हैं। तो इसीलिए त्रिरेखांक कंठ, तो भगवान वो बड़े अलौकिक होते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसमें उनके सौंदर्य, उनकी मधुरता, उनकी दिव्यता हमेशा बरकरार रहती है। और वो भगवान अभी क्या कर रहे हैं, वो जब इस तरह से यशोदा उनके पीछे दौड़ती है, बाद में पकड़ लेती है, यशोदा उनको बांधने का प्रयास करती है, पर क्या होता है वो बांध नहीं पाती है, बहुत प्रयास करती है। और यह जो है इसका बांधने का प्रयास करना, यशस्वी न होना, बाद में यशस्वी होना, इसके हम चर्चा आगे के श्लोकों में करेंगे। पर यहाँ पे जो बताया गया है क्या होता है, अंत में स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्ति बद्धम, तो जो है ये जो है भगवान दामोदर, कृष्ण है उनका नाम, अभी दामोदर बन गया है। उदर मतलब जो पेट का भाग होता है उदर कहते हैं, दाम मतलब रस्सी, जो भगवान एक रस्सी से बांधे गए। पर ये कौन सी रस्सी है, एक साधारण रस्सी नहीं है, भगवान को बांधने के लिए कोई रस्सी पर्याप्त नहीं होती है, रस्सी है भक्ति बद्धम, केवल भक्ति से बांधे जाते हैं भगवान, किसी और चीज से वो बांधे नहीं जा सकते। तो जो भगवान है अनंत है, भगवान विश्व रूप का दर्शन देते हैं अर्जुन को भगवद गीता में, और अर्जुन तभी कहते हैं नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। कहते हैं प्रभु आपका शुरुआत कहाँ है, आपका अंत कहाँ है, आपका मध्य कहाँ है, जो कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे भगवान जो अनंत है उनको भले कोई से कोई बांध, कोई कैसे बांध सकता है, साधारणतः कोई बांध नहीं सकता। पर यहाँ पे वो बांधे जाते हैं क्योंकि वे जो है प्रेम से बंधे गए हैं। तो ये प्रेम भगवान के भक्तों की शक्ति क्या होती है, जब हम भगवान के सामने उनके भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। साधारणतः दुनिया में क्या होता है कि हम खुद की शक्ति खाना चाहते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं इतना बड़ा हूं, मैं उतना बड़ा हूं, तो हम खुद को बड़ा चढ़ा के बताते हैं। पर भगवान के सामने आते हैं तो हम जितना खुद को नम्र बताते हैं, जितना खुद को अशक्त असहाय बताते हैं, उतना भगवान हमारी ओर प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर भगवान उनकी शक्ति हमें प्रदान करते हैं। और भगवान की शक्ति तो अनंत है। तो यशोदा बंधी गई है किस तरह से, उनकी भक्ति के कारण यशोदा कृष्ण को बांध पाई है। तो यह जो भगवान है, अभी साधारणतया ऐसे बता रहे भगवान अगर हम न्यायाधीश की तुलना करते हैं तो न्यायाधीश न्यायाधीश जो किसी के प्रति आरोप होता है तो फिर न्यायाधीश फैसला करते हैं, फिर व्यक्ति को बांधा जाता है। पर अगर आप कोई न्यायालय में आते हो न्यायाधीश कोई बंधा हुआ दिखते हैं, ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे ऐसे हुआ है कि भगवान बांधे गए हैं, और भगवान कैसे बांधे गए, प्रेम के कारण। तो ये पूरी जो लीला है यह एक तरह से विडंबना है, बड़ी अद्भुत है कि जो साधारणतया भगवान और भक्त का संबंध होता है उसका पूरा विपरीत हो गया यहाँ पे। और ये विपरीत जो है ये बड़ा अद्भुत है। और ये क्यों हुआ है कि ये स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, भक्ति के कारण हुआ है। और यही जो मैं पता पहले दो श्लोक जो थे उसमें क्या है वर्ण, उसने लीला का वर्णन है, और बाकी श्लोकों में जो है लीला का विश्लेषण है। तो अभी हम और दो श्लोक देखेंगे और फिर हम चार श्लोक हम देख पाएंगे। इति दृक्स्व लीला भेरानंद कुंडे, तो इति दृक् इस तरह से देखो आप, स्वलीला भीर वह अपनी खुद की लीला कर रहे हैं अपने बड़े ही अंतरंग पार्षदों के साथ। और क्या हो रहा है ये लीला देख के, ऐसा जो जो समझते हैं वास्तव में क्या हो रहा है वो एक बड़ा ही अद्भुत आनंद अनुभव करता है। आनंद कुंडे, अभी कोई आनंद का कोई बड़ा सागर होता है तो किसी को भय होगा कि सागर में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, इसकी लहरें आएगी वो डूब जाएंगी। पर मान लीजिए बड़ी गर्मी है और किसी के घर में छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो अभी जब उसमें अगर कोई कूदता है तो क्या होता है, राहत होती है, जो गर्मी से राहत मिलती है, जो छोटा सा है तो उसमें डूबने का ज्यादा कोई भय नहीं है। तो आनंद कुंडे कैसे है कि यह एक ऐसा कुंड जिसमें वो कूद गए हैं, और भक्त क्या करते हैं एक अनंत आनंद का अनुभव करते हैं। इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से अलग अलग दुख होते हैं, पर इन सबके परे एक दिव्य आनंद होता है, वो है भगवान की स्मृति का। सुखतरम अपरम न जातु जाने हरिचरण स्मरणामृते न तुल्यम, कि भगवान के स्मरण के समान कोई और आनंद इस भौतिक जगत में नहीं है। तो आनंद कुंडे वह आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, न केवल आनंद का अनुभव कर रहे हैं, टॉक अ लिटिल सॉफ्टली, स्वघोषम निमाजंतम आख्यापयंतम, स्वघोषम, तो इस तरह से वो घोषणा कर रहे आख्यापयंतम जोर से अपने पार्षदों के साथ, जो उनके साथ लीला करते हैं उनके साथ वो घोषणा कर रहे निमाजंतम आख्यापयंतम, जो आनंद में आप्लावित हो गए हैं वो घोषणा कर रहे। क्या घोषणा कर रहे, तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वाम् कि जो व्यक्ति भगवान की महिमा को जोड़ देते हैं कि भगवान इतने महान हैं, उनको बता दे कि हाँ भगवान की महिमा को जान सकते हैं पर भगवान को अपना बनाना है, तो फिर उसके लिए आपको भगवान की महिमा से पर जाके भगवान की मधुरता को समझना है। कि जो भक्ति होती है डिवोशन, उसके दो विभाग होते हैं कि एक है कि जब भगवान की महिमा समझते हैं तो फिर क्या होती है, नम्रता आती है। नोइंग गॉड्स ग्रेटनेस ब्रिंग्स सबमिशन एंड नोइंग गॉड्स स्वीटनेस ब्रिंग्स अफेक्शन। कि भगवान की महिमा को जानते हैं तो उससे हमको नम्रता आती है, और भगवान की मधुरता को जानते हैं तो उससे स्नेह आता है। और जो नम्रता और स्नेह ये दोनों जब साथ में आते हैं तो भक्ति होती है। भक्ति में केवल स्नेह नहीं है, केवल नम्रता नहीं है, दोनों का एक संगम है भक्ति। तो अभी कैसे है कि भगवान की नम्रता को भगवान की महिमा को समझना जरूरी है। मैं पुणे में एक प्रवचन दे रहा था, वहां पे बताया था कि कैसे ब्रजवासी वो जो है यशोदा माई नंद महाराज ये सब कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो वहां पे एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और कहने लगा कि मैं भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता। तो अभी एक है इग्नोरेंस और दूसरा है ट्रांसेंडेंस। एक है अज्ञान के कारण कुछ संकल्पना होना और दूसरा है कि प्रेम के कारण कुछ संकल्पना होना। तो अभी क्या है कि जो अज्ञान में है वो शायद सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, भगवान कौन है, ये कृष्ण भगवान नहीं है, ये सब अज्ञान के लक्षण है। पर कैसे है कि जो व्यक्ति दिव्य प्रेम से उनका हृदय आप्लावित होता है तो उनकी दृष्टि अलग होती है। तो भगवान की महिमा का जो ज्ञान है, आचार्य गण बताते हैं कि वो ऐसे है कि वो एक आस बादल में तारों के समान है। अभी बादल में तारे जो होते हैं दिन में भी होते हैं, पर जो तारे जो होते हैं वो दिन में दिखते नहीं है, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी इतनी होती है कि वो तारे दिखते नहीं है। तो अभी कोई अंधेरे में है, रात को कुछ भी नहीं है और रोशनी के स्रोत नहीं है, तो फिर तारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो ध्रुव तारा होता है, जो तारा होता है तो उसकी ओर देख के मान ले सागर में जो जहाज होते हैं, नाव होते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। कंपस के संशोधन के पहले ऐसे करते थे वो लोग। तो अभी क्या है, भगवान का जो भगवान की महिमा का जो ज्ञान है वो तारों के समान है। और जब हम अज्ञान के अंधकार में है तो भगवान की महिमा को समझना बहुत जरूरी है। भगवान की महिमा को समझना, भगवद्गीता के श्लोक समझना, भगवद्गीता का तत्व ज्ञान समझना, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारे जो मान लीजिए अंधेरा है और बादल में तारे भी नहीं है, उस व्यक्ति पूरा गुमराह हो जाएगा। तो जब इस तरह से अज्ञान में लोग होते हैं तो भगवान की महिमा को समझना बहुत जरूरी है। भगवान की महिमा जो है वो तारों के समान है, और तो तारों के द्वारा हमको हमारा रास्ता पता चलता है। पर तारों के मार्गदर्शन के साथ व्यक्ति अंधेरे में चलता है और फिर बाद में सुबह वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, और गंतव्य पहुंच जाता है फिर वहां पे दिन उग जाता है और वहां पे सूर्य आ जाता है। अभी सूर्य जब उग गया है तो फिर आसमान में अभी भी तारे हैं पर वो तारे दिखते नहीं है। तो उसी तरह से क्या है, जो व्यक्ति अज्ञान में है बिल्कुल और अंधेरे में है, वो ऐसे है ऐसे ऐसे बादल में है जहां पे तारे है ही नहीं, बिल्कुल मोह में है। पर जो भक्त भगवान के तत्वज्ञान को समझते हैं तो उनके आसमान में तारे आ गए हैं, और वो तत्वज्ञान के मार्गदर्शन से व्यक्ति अपना जीवन जीता है और फिर धीरे धीरे वो अपने गंतव्य तक पहुंचता है। और गंतव्य क्या है, भगवत प्रेम। और जब भगवत प्रेम आ जाता है तो फिर क्या होता है, यह जो तारे है अभी इनकी जरूरत नहीं है। भगवत प्रेम में आ जाता है तो फिर भक्त को जो महान भक्त होते जो ब्रजवासी है वो कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करते कि कृष्ण भगवान है, वो कृष्ण से प्रेम करते हैं क्योंकि कृष्ण इतने आकर्षक है, कृष्ण इतने प्रेम पूर्ण है। वो कृष्ण से प्रेम करते हैं क्योंकि कृष्ण कृष्ण है, न कि कृष्ण भगवान है। तभी उनको ज्ञान है कि भगवान कृष्ण भगवान है, पर वो ज्ञान है वह उनकी चेतना के पीछे के हिस्से में चला गया है। उनको वो ज्ञात नहीं रहता है, ज्ञान है पर वो ज्ञात नहीं रहता है। कैसे? उनके लिए वो जो ज्ञान है वो दिन में तारों के समान है पर दिखता नहीं है। तो अभी कैसे है, यशोदा माई अगर हमेशा याद रखेगी कि कृष्ण भगवान है, तो फिर वो कृष्ण भगवान है तो वो तो मेरा अन्न वो योजना कर रहे हैं, तो मैं उनके अन्न की योजना क्यों करूं? सेवा भाव नहीं रहेगा। तो सेवा भाव के लिए क्या होता है, वह एक तरह से भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। और यहां पर बताया जा रहा है तदीयेषु तद्वेषु भक्तैः तत्त्वम्, कि भगवान जीते जाते हैं वो केवल भक्ति से जीते जाते हैं, किसी और चीज से नहीं जीते जा सकते। और तथा प्रेम भक्ति सॉरी तदीयेषु तद्वेषु भक्तैः तत्त्वम् पुनः प्रेम तस्तम शतावृति वंदे, कि मैं पुनः प्रेम के साथ ऐसे भगवान को शतावृति एक नहीं दो नहीं सैकड़ों बार मैं प्रणाम करता हूँ, सैकड़ों बार मैं उनको दंडवत देता हूँ। कि एक तरह से बड़ा महान व्यक्ति है, उसकी महिमा को देख के हमको आकर्षण होता है, पर जब हम देखते हैं कि व्यक्ति कितना मधुर है तो आकर्षण और बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर कोई मान लीजिए कोई मिलिट्री जनरल है, कोई राष्ट्र के सेनापति है और बड़े युद्ध में निर्भय होकर युद्ध करते हैं और बड़े बड़े शत्रुओं को हरा दिया है, तो उनको जानते हैं हम बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा आनंद होगा, बड़ा एक तरह से उनकी जानकारी हो सके, उनसे मुलाकात हो सके, तो इतने बड़े व्यक्ति है तो हमें उनके प्रति आदर होगा। पर मान लीजिए हम उनके घर में जाते हैं और घर में देखते हैं कि वह उनका एक पोता है और पोता उनको घोड़ा बनाया है और वो घोड़े के रूप में दौड़ रहे, तो ये इतना बड़ा व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहे हैं, क्या होता है ये ऐसे भी करते हैं, तो उससे एक बड़ा अलग प्रकार का स्नेह जागृत होता है। जो सेनापति ने बड़े बड़े सेना को हरा दिया है वो सेनापति को क्या हो गया, अपने पोते ने हरा दिया, पोते ने उनको घोड़ा बना दिया और दौड़ो दौड़ो और तेजी से दौड़ो, दौड़ते नहीं हो तुम दौड़ो और तेजी से, तो फिर वो पीट रहा है और दौड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो यह देख के क्या होता है, उस व्यक्ति के प्रति हमारा जो उनकी सराहना है और बढ़ जाती है। उस तरह से सत्यवत मुनि कह रहे हैं कि भगवान इतने अद्भुत है कि ये अपने भक्तों के प्रेम से बंधे जाते हैं और ऐसे भगवान को मैं वारंवार प्रणाम करता हूँ। चौथा श्लोक जो है, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा,
वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा।
हे भगवान, आप अलग अलग प्रकार के वर दे सकते हैं। वरम देव, आप आपको आपकी महिमा ही आपकी ख्याति है ऐसी कि आप वर प्रदान करते हैं और आप अलग अलग प्रकार के वर दे सकते हो, पर मुझे कोई वर नहीं चाहिए। कहते हैं कि अलग कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे इस भौतिक जगत में आप धन संपत्ति दे दो। जब ये भाव होता है तो क्या होता है, हम भगवान के साथ एक धंधा कर रहे हैं, मैं आपको ये देता हूं आप मुझे ये दो। और क्या धंधा कोई करता है तो व्यापार करता है तो व्यापार में लोग क्या चाहते हैं, कभी कभी बेईमानी भी कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कम से कम दूंगा और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करूंगा। तो एक बार एक व्यक्ति ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा और लॉटरी का टिकट था 1 करोड़ रुपए के लिए। और फिर वो मंदिर में गया और मंदिर में भगवान से बोला कि हे भगवान, अगर मुझे लॉटरी का टिकट मिल जाएगा ये तो मैं 50% आपको दे दूंगा, 1 करोड़ मुझे मिल जाएगा मैं आपको 50 लाख दे दूंगा। तो फिर 1 हफ्ते के बाद उसका लॉटरी का रिजल्ट था। तो फिर वो 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ, वो जब रिजल्ट निकला तो उन्होंने क्या पता चला उनको कि उनको 50 लाख का टिकट मिला था। तो कितना था, 50 लाख का उनको मिला था। अरे तो फिर 50 लाख का टिकट वो मंदिर के मंदिर में गए, अरे भगवान आप तो बड़े बुद्धिमान निकले, आपने अपना हिस्सा पहले ही ले लिया। तो क्या होता है कि जब हम भगवान से एक व्यापार के रूप में रक्षा रूप में एक रिश्ता रखते हैं तो क्या होता है, तो वहां पे कई बार बेईमानी हो जाती है। तो ये इस प्रकार का रिश्ता में क्या है, मैं आपको कुछ दूंगा पर आप मुझे उससे ज्यादा देना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं, आप मुझे, मैं आपको थोड़ी सी प्रार्थना देता हूं आप मुझे बड़ा वर दे दो, पर मुझे ऐसा कोई मुझे भौतिक वर नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, क्या चाहिए। क्योंकि अभी कुछ लोग थोड़े आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये सारी भौतिक चीजें जो है ये हमको बंधन में फंसाती है, आसक्ति लगाती है हमारे जीवन में, और आसक्ति के कारण दुख आता है। हम जितना भी किसी चीज से आसक्त होते हैं वो चीज अगर चली जाती है और चले जाने का भय भी होता है तो दुख आता है। तो इसीलिए कोई सोचेगा कि मुझे चीजें नहीं चाहिए, तो कोई कोई जो थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते सोचते हैं कि मुझे सारे आसक्तियों से मुक्ति चाहिए, मुझे इस भावबंधन से मुक्ति चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, वरम देव मोक्षम न मोक्षावध, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, न मोक्षावधिम वा, मोक्ष से बड़ा क्या है, मोक्ष ये भौतिक जगत है, ये मोक्ष का पद है और उसके परे आध्यात्मिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत में क्या है, भगवान वैकुंठ में विष्णु रूप में रहते हैं। वो कहते हैं कि मोक्षावधिम वा, कि मोक्ष के मोक्ष से बड़ा है वैकुंठ की प्राप्ति, जहां पे भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। बोले मुझे वो भी नहीं चाहिए, मोक्षावधिम वा न चान्यम ऋणे हम वरेषादपि ह, और इसके अलावा भी आपको कुछ वर देना चाहोगे, मुझे वो भी वर नहीं चाहिए, न चान्यम ऋणे हम। तो फिर क्या चाहिए आपको, तो अभी कोई भी वर नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या, कुछ तो चाहिए आपको। क्या है कि हम ऐसा भाव होता है कि हम केवल ना नहीं बोल सकते हैं, हम अगर किसी चीज के ना बोलते हैं तो वो एक तरह से संभव नहीं है मानसिक स्तर पे। अगर अभी शारीरिक स्तर पे होता है, अगर मैं इसको स्पर्श करता हूं, इसको स्पर्श करता हूं तो मान लीजिए इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, शॉक लगता है, तो फिर मैं फैसला करूंगा कि ये पूरे अभी प्रवचन में मैं हाथ हिला सकता हूं पर इसको स्पर्श नहीं करूंगा। तो कोई भौतिक वस्तु है उसको हम फैसला कर सकते, मैं स्पर्श नहीं करूंगा इसको, पर मन के स्तर पे हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर मन के स्तर पे हम बोलते हैं कि मैं इस चीज के बारे में विचार नहीं करूंगा, तो क्या है, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं अगले 30 सेकंड के लिए आप एक गुलाबी बंदर के बारे में विचार मत कीजिए, एक गुलाबी बंदर छोड़ के आप किसी भी चीज के बारे में विचार कर सकते हैं, सिर्फ गुलाबी बंदर के बारे में विचार मत कीजिए, तो क्या होता है, हाँ, जिंदगी में आपने कभी गुलाबी बंदर के बारे में सोचा नहीं होगा, गुलाबी बंदर, गुलाबी कैसे बना वो, क्या गुलाबी पेंट में गिर गया था वो, या क्या हो गया, किसे जींस चेंज कर दिया किसी ने, उसके गुलाबी बन गया हो, क्या सोचते लगे गुलाबी के बारे। तो क्या है, किसी भी चीज को हम ना बोलते ये मत करो तो वो करना मुश्किल होता है। तो क्या है कि विचार जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। To think that I will not think of something is also to think of that thing. मैं इस चीज का विचार नहीं करूंगा, वो विचार भी अगर मैं करता हूं तो क्या होता है, मेरी विचार शक्ति उस चीज को जाकर स्पर्श कर रही है। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमें ना बोलना किसी चीज को वो आनंददायक नहीं है और वो आसान भी नहीं है। तो इसीलिए ना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण क्या है, हाँ बोलना। अगर मान लीजिए अगर आप एक कमरे में हैं और वो एक कमरे में एक ही व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, और उस व्यक्ति से आप रूठे हुए नाराज है, और आपने फैसला किया कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, और मान लीजिए आप दोनों को उसी कमरे में एक घंटे के लिए बैठना है, ये आप करोगे क्या, आपके पास फोन भी नहीं है, फोन होगा तो फोन पे आप कुछ कर सकते हैं क्या, आप बादल की ओर देखेंगे, कोई और है ही नहीं तो उसके बाद बात करना पड़ेगा। पर मान लीजिए अगर उसी कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति है और उस व्यक्ति में आपको रुचि है, उसका संबंध आपका अच्छा है, तो उस व्यक्ति से आप बात करने में लग जाओगे और फिर क्या है, इस व्यक्ति को ध्यान न देना आसान हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या है कि हमारे जीवन में शायद हमारी कुछ बुरी आदतें हो सकती है, कुछ बुरी वासनाएं हो सकती है, उनको ना बोलना है, ना बोलना बड़ा मुश्किल है। तो वैसे क्या है, वो अगर वो है और हम हैं, मैं ये नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, तो क्या होगा हमारा धीरे धीरे क्या होगा, मैं ये नहीं करूंगा तो नहीं मिट जाएगा, मैं ये नहीं करूंगा मैं ये नहीं करूंगा मैं ये करूंगा, और मैं कर देगा वो, हम कर देंगे वो। तो इसलिए क्या है, हमें क्या नहीं करना है उसके बारे में इतना विचार नहीं करना जितना हमें क्या करना है, और क्या करना है, ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो वो करने में लग जाओ, और फिर जो नहीं करना है वो अपने आप छूट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, पर क्या चाहिए वो बता रहे। इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम,
इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम,
कि ये जो भगवान का रूप है, कैसा रूप है, एक गोपाल के जो रूप, गोपाल के भाव में जो रूप है, एक ग्वाल है। तो वो क्या चाहते, सदा मे मनस्या विराष्टम की मन्ये,
सदा मे मनस्या विराष्टम की मन्ये,
बोलते हैं कि इसके अलावा कि ये रूप सदैव मेरे मन में आते रहे, सदैव मैं इसकी स्मृति होते रहे, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। तो दुनिया में शुरुआत में बताया था कि हमारे अनेक इच्छाएं होती है, जरूरतें होती है, पर हमारे सबसे महत्वपूर्ण जरूरत जो है वो एक शारीरिक स्तर पे, हमें अन्न चाहिए, हमें वस्त्र चाहिए, हमें मकान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें जल चाहिए, हमें हवा चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण जरूरत जो है इनकी सबके अलावा जो है कि हम सबको, वी ऑल नीड अ सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट, हमें विचार करने के लिए कोई संतुष्टि देने वाला विचार करने की वस्तु चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अनेक चीजें हैं और ऐसी बहुत सी चीजों का हम विचार करते हैं और विचार करके हम उसे परेशान हो जाते हैं। तो जो पाश्चात्य देश में जो लोग साधारणतया जो अच्छे अच्छे आध्यात्मिक, अच्छे आर्थिक परिस्थिति में, अच्छे शारीरिक परिस्थिति में, उनका एक विशेष सर्वे किया गया, हालांकि 5% समय लोग सुखी रहते हैं, 5% समय लोग दुखी रहते हैं, और 90% समय लोग बोर रहते हैं। और पूरा आजकल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो क्या है, बेसिकली एक बोर्डम इंडस्ट्री है, कि लोग बोर हो गए हैं और वो उनके बोरिंग जो बोरिंग परिस्थिति से उनको बचना है। तो अभी क्या है, लोग मनोरंजन इसलिए देखते हैं कि उनको कुछ सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट चाहिए, कुछ ऐसा कोई विचार करने के लिए चाहिए जो कि हमको कुछ संतुष्टि दे। पर क्या है, मनोरंजन जो है वह वास्तव में एक पेन किलर के समान है, थोड़ा सा मनोरंजन से थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है, पर उसके बाद में क्या होता है, पुनः हमको वापस और चाहिए। तो पेन किलर कोई लेता है तो क्या होता है, थोड़ी सी राहत मिलती है पर बाद में पेन किलर का और डोज चाहिए, और बाद में और डोज चाहिए, और डोज चाहिए। तो उस तरह से क्या होता है, मनोरंजन और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पहले एक टीवी था, एक चैनल था, अभी सैकड़ों चैनल है और इंटरनेट है, तो क्या है अलग अलग चीजें हम देख सकते हैं, पर फिर भी लोग बोर्ड है, लोग डिप्रेस्ड है। तो क्या है, हमारे मन को जो संतुष्टि देने वाली वस्तु जो है उसके लिए हमें एंटरटेनमेंट नहीं, एनलाइटनमेंट चाहिए। हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से हमें पता चलता है, यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत, कि भगवान ही हमारे विचार के लिए सर्वोच्च व्यक्ति वस्तु है। जब हम भगवान के बारे में विचार करते हैं तो क्या होता है, भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, कि उनके मन, उनके बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन भय से मुक्त हो जाता है, शांति और सुख से आप्लावित हो जाता है। और यही यहाँ पे इच्छा हो रही है, सत्यवत मुनि कह रहे हैं कि भगवान, अभी भगवान के बारे में विचार हम कैसे कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में विचार करना है तो उसके बारे में हमें कुछ आकर्षण होना चाहिए। हम अधिकांश आपसे भारतीय है तो शायद भारत को, भारतीय लोगों को क्रिकेट में बड़ी रुचि होती है, तो क्रिकेट के बारे में विचार करना है तो आसानी से हो जाता है। अगर कोई बोला बेसबॉल के बारे में विचार करो, बेसबॉल क्या है मुझे पता भी नहीं है, कैसे विचार करो, तो आगे अगर हमें किसी चीज के बारे में आकर्षण है तो उसके बारे में विचार करना आसान हो जाता है। तो ये जो लीला का वर्णन है ये इतना मधुर वर्णन है कि लीला सुन के मैं भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है, जब आकर्षण निर्माण हो जाता है तो उनके बारे में स्मृति करने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सत्यवत मुनि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी ये लीला इतनी मधुर है कि मैं इस लीला जो करने वाले जो भगवान का रूप है मैं उसी का स्मरण चाहता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता मैं। इसके अलावा और चीज का क्या महत्व है, क्या रुचि है किसी और चीज की, मुझे और वो नहीं चाहिए। तो यह जो है हम सबकी दामोदर मास में जो भगवान को अभी हम ये अर्पण करेंगे, हम सब ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम सब भी हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाए और हमारे मन में भगवान एक परम शांति और संतुष्टि देने वाले वस्तु के रूप में स्थित हो जाए और फिर हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी, समस्याएं आएगी जाएगी, पर उनके विपरीत हम भगवान में एकाग्र होकर स्थिर और संतुष्ट रह सकते हैं। तो सारांश में आज हम चर्चा की किस तरह से हम दामोदर लीला के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। तो हमने दामोदर अष्टकम के बारे में चर्चा की आज। शुरुआत होता है कैसे कि हम हमारी इच्छाओं के पूर्ति करने के लिए जब हम नहीं कर पाते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद कोई भगवान है जो मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने में मदद कर सकते हैं। तो उस समय हमें भगवान में रुचि नहीं है, भगवान मुझे क्या दे सकते हैं उसमें रुचि है। जैसे कि कोई हम शॉप में जाते, दुकान में आते हैं तो दुकान में कौन खड़ा है उसमें रुचि नहीं, वो जो अपना काम करता है कि देखते हैं, पर जो व्यक्ति काम नहीं करता है तो हम अरे आप कौन है देखते हैं। तो भगवान जो हम उनसे अपेक्षा करते हैं, भगवान उसके विपरीत कुछ करते हैं तो आश्चर्य होकर हम भगवान ये कैसे भगवान है हम देखते हैं। तो इस लीला में जो भगवान की संकल्पना है उसके पूरा उल्टा कार्य हो रहा है। भगवान परमपिता है तो यहाँ पे क्या है, भगवान एक संतान बन गए। भगवान सब लोगों में भगवान का भय होता है पर यहाँ पे भगवान में किसी का भय है। सब लोग भगवान के भय के कारण नैतिक कार्य करते हैं पर भगवान यहाँ पे चोरी कर रहे हैं। सब लोग कोई भी भगवान को बांध नहीं सकता है, भगवान कर्म के नियम में सबको बांधते हैं पर यहाँ पे शुदा ने भगवान को बांध दिया है। तो ये सारा जो है जिसे अपेक्षित है उसके बिल्कुल विपरीत हो गया है। जब इस तरह से हो गया है तो उससे क्या होता है, उससे हमें कौन है भगवान समझने के उत्कंठा आकर्षण एक कौतूहल जागृत होता है और फिर उसके बारे में बताते हैं भगवान ये तुम्हें बता रहे हैं कि ये कौन है। ये भगवान की लीला है। लीला मतलब भगवान क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो भी संबंधों में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं सब रसों का अनुभव करना चाहते हैं। भगवान का एक पर्सनल लाइफ है, वो केवल एक न्यायाधीश के रूप में सुखी नहीं है। तो जैसे कोई अमीर व्यक्ति कोई भिखारी का भूमिका करता है किसी नाटक में, वैसे भगवान गोकुल में एक लीला करते हैं जिसमें वो एक छोटा बालक बन जाते हैं। और छोटे वो चोरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चोरी के द्वारा थोड़ा सस्पेंस थोड़ा रोमांच आता है और रोमांच के द्वारा क्या है, जब विरोध आता है तो रोमांच आता है, रोमांच आता है तो उससे वो रुचि आती है। तो भगवान अपनी लीला को बहुत ही रोमांचक बनाते हैं, एक्साइटिंग बनाते हैं और फिर भगवान यहाँ पे बांध ही गए हैं। वो उनको कोई बांध नहीं सकता है पर केवल भक्ति के रूप से भक्ति के द्वारा बांध जाते हैं वो। तो हमने देखा कि भगवान के बारे जानना है तो दो चीज है, उनकी महिमा जिससे नम्रता आती है और उनकी मधुरता जिससे स्नेह आता है। और मधुरता स्नेह दोनों साथ में जब होते हैं तो वो प्रेम होता है, वो दिव्य भक्ति होती है। तो दोनों साथ में कैसे आ सकता है, जब भगवान के महिमा को जानना यह है अंधेरे में तारों को देखना और तारों के द्वारा सही मार्ग ढूंढना। पर जब भगवान की प्रेम जागृत हो जाता है भक्ति जागृत हो जाती है शुद्ध भक्ति, तो क्या है वो हम सुबह तक पहुंच गए हैं और सूर्य की रोशनी जब आती है तो फिर तारों की कोई जरूरत नहीं होती है। उसी तरह से जब हम भगवान के ब्रजवासियों का भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है कि वो भगवान के भगवत्व को जानते हैं पर उनके ज्ञात नहीं रहता है उनको, वो भगवान से प्रेम इसलिए करते हैं न केवल वो भगवान है क्योंकि वो कृष्ण है और इतने आकर्षक है। और ऐसे जो कृष्ण है वो जब हम समझते हैं कि प्रेम के लिए कितना वो अपने भगवत्व को भी छुपा रहे हैं तो उनके प्रति हमारा आकर्षण जागृत होता है। और हम सब उनके यहाँ पे हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में कि कोई अलग अलग प्रकार के वर चाहते हैं हम भगवान दे सकते हैं, पर सर्वोच्च वर भगवान से क्या मिल सकता है तो उनके प्रति जो भक्ति है वही मिल सकती है। तो क्या है कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है कि एक संतुष्टि देने वाले कोई व्यक्ति जिसके बारे में विचार कर सके, सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। एंड जब हम भक्ति के द्वारा भगवान को आकर्षित जाते हैं पता चलता है हमें कि भगवान ही सर्वोच्च आकर्षक विचार करने की वस्तु है और उनके विचार करने में ही जीवन का सबसे बड़ी शांति सबसे बड़ी समृद्धि सबसे बड़ा आनंद है। जैसे आप सत्योत में प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु सदैव आपकी स्तुति मुझे हो, वैसे हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी भक्ति भगवान के जागृत होकर उनकी हम स्मृति सदैव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है?
मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि कोई भी बैड हैबिट है तो ना नहीं बोलना है, गुड थिंग्स के ऊपर ध्यान देना है और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली चला जाएगा। तो मतलब अभी कोई बैड थिंग्स है तो अभी अब हम उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन, उसको ना नहीं बोल पाएंगे और गुड थिंग्स पे ध्यान देंगे तो मतलब कैसे वो
देखिए कोई बुरी चीजें हैं तो उसको ना बोलने में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नहीं, ऐसे नहीं है कि ध्यान नहीं देना है, जरूर हमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें छोड़नी है। शायद हमें बहुत क्रोध आता है, शायद हमें अलग अलग ईर्ष्या आती है किसी के प्रति, अलग अलग प्रकार के से बुरी भावनाएं बुरी आदतें हमें हो सकती है, तो हमें उनको छोड़ना जरूर है, पर हमें हमारे जीवन का उद्देश्य उन्हें छोड़ना नहीं बनाना है। हमारे जीवन का उद्देश्य हमें जोड़ना बनाना है, ये भगवान से जोड़ना है, कुछ अच्छा कार्य करना है। और वो अच्छा कार्य करने पे जब हम जोर देते हैं तो क्या होता है, तो हम सकारात्मक दिशा में रहते हैं। मान लीजिए क्रोध है किसी का, तो अभी कैसे है कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि हमारा जो क्रोध है शायद वो साधारणतः इस लेवल पे रहता है, और कभी कभी एकाएक उसका सर्ज हो जाता है, एकदम बहुत बढ़ जाता है। और अभी हम फैसला करते हैं, अब कभी जो क्रोध में कुछ बहुत बुरा भला कह देते हैं, कुछ बहुत अच्छा बुरा कर देते हैं, और फिर बड़ा बाद में दुख होता है कि मैं ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो अच्छा है उससे ऐसे लगना कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पर क्या है कि अभी जब उस तरह से क्रोध का प्रवाह आ जाता है तो तभी शायद रोकना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है, अगर हम पहले बोलते हैं मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, कभी कभी क्या होता है कोई व्यक्ति फैसला करता है क्रोध नहीं करूंगा और फिर कुछ होता है तो क्रोध करने लगते हैं, और फिर कोई बोलता है तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम क्रोधित हो रहे हो, तो बोलते मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूं तो फिर वो याद से ही वो क्रोध हो जाते हैं, वो याद ही रहने से फिर क्या है जो नकारात्मक केंद्र रखते हैं हम, तो फिर क्या है हमको लगेगा कि मैं फैसला करता हूँ फिर हताश हो जाता हूँ, फैसला करता हूँ फिर हताश हो जाता हूँ, तो फिर उससे क्या होता है, मैं कनाडा में था तो एक भक्त मुझे बोले कि मुझे फाइनली वैराग्य का राज पता चल गया है। अच्छा क्या राज है? मैंने वैराग्य के प्रति वैराग्य ले लिया है तो क्या कर दूंगे, हताश होकर हम छोड़ने प्रयास कर, तो उससे बेहतर क्या है कि मान लीजिए ऐसा सर्ज आ गया है तो तभी शायद हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो बाद में भी वापस कुछ एक हफ्ते के बाद एक महीने के वापस सर्ज आएगा, बढ़ जाएगा वो क्रोध। तो अभी उस समय जब आएगा तो हम क्या कर पाएंगे हमें पता नहीं है, पर उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर उसके बीच में हम खुद को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से नियम बना रहे हैं, अच्छे से नियमबद्ध साधना कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है हम दिव्य शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। अगर उस समय हम सिर्फ विलाप करते रह गए मैं क्रोध नहीं करने वाला था, क्यों किया क्यों किया क्यों किया, तो फिर क्या हो रहा है उससे हम खुद को शक्तिशाली नहीं बना रहे हैं, और फिर अगले बार वापस क्रोध का प्रवाह आएगा हमसे वापस प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए जरूर हमें टालना, हमें जो है वो छोड़ना या टालना करना है, पर वह छोड़ना या टालना हमारा केंद्र नहीं बना दिया, हमारा केंद्र है कि मैं क्या करने वाला हूं। कि हर एक से क्या होता है कि हर एक आदत का एक प्रवाह होता है, जैसे मैं कोई बार बार किया तो एक प्रवाह होता है, तो वो प्रवाह को खुद रोकना बड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए अगर हम एक रास्ते पे है और एक बड़ा ट्रक सामने से आ रहा है, मैं बोलता हूं मैं तो इस ट्रक को रोक दूंगा, तो ट्रक हमको कुचल के चला जाएगा। तो क्या है हमारी जो आदतें है, हमने कई बार कुछ कार्य किया है, कुछ प्रकार की विचारधारा है, कुछ तो वो अभी एक ट्रक के समान बन गई है, और अगर हम अकेले इसको रोकूंगा तो वो अकेले एक ट्रक को रोकने के समान है, वो नामुमकिन। तो अभी ट्रक को रोकना है तो क्या करना है, तो आप वो ट्रक आने वाला है तो आप दूसरे ट्रक में बैठ जाओ, और अगर आपका ट्रक उतना ही शक्ति आए तो वो ट्रक वाला लिखे आप टक्कर हो जाएगा तो मेरा भी नाश हो जाएगा तो फिर वो नहीं आएगा. सो डोंट ट्राई टू फाइट योर बैड हैबिट्स, ट्राई टू क्रिएट गुड हैबिट्स एंड लेट द गुड हैबिट्स फाइट योर बैड हैबिट्स. क्या है, अपने बुरे आदतों से खुद मुकाबला करने का प्रयास मत करो. वो कैसे अकेला व्यक्ति ट्रक से मुकाबला करने के समान है. अच्छी आदतें बनाओ और अच्छी आदतों को वो बुरी आदत लगने दो. इसलिए क्या है, इसे बोला था बुरी आदतों को छोड़ना जरूरी है पर क्या मैं क्या करने वाला हूं उस पर जोर. कोई बोलेगा कि मैं फोन पे बहुत समय बर्बाद करता हूं, मैं फेसबुक ये वो उस पर बहुत समय चला जाता, मैं नहीं करूंगा. ठीक है, अभी नहीं करूंगा तो क्या करने वाले है? वो फैसला करें. मुझे शायद भगवद गीता पढ़नी, मुझे भागवतम पढ़ना है, मैं रोज 15 मिनट भागवतम पढ़ूंगा, आधा घंटा भागवतम पढ़ूंगा. तो वो आदत लगाओ और ऐसे आदत लगाए तो क्या होगा, धीरे धीरे भागवतम में रुचि आ जाएगी. और शायद पहले हम बोले मैं ये इसमें सोशल मीडिया में इतना समय डालूंगा, फिर भी समय वेस्ट करते रह गया. पर जैसे भागवतम में रुचि आ जाएगी तो फिर वो छोड़ना आसान हो जाएगा. तो इसलिए ये भाव था कि ना पे जोर मत दो, हाँ पे ज्यादा जोर.
आपने अन्नमय कोशा के बारे में स्टार्टिंग में कुछ कहा, मैंने कहीं पढ़ा है यू हैव मोर लेयर्स,
करेक्ट, यस.
तो आप थोड़ा उसके बारे में.
अच्छा, तो अलग अलग कोश है अन्नमय के समान, तो उसके क्या बता सकते हैं आप? हाँ, तो क्या है ये उपनिषदों में बताया गया है, पांच प्रकार, पांच कोश होते हैं. क्या है कोश, ये एक तरह से चेतना का स्तर है. कोश संकल्पना थोड़ी जटिल है, पर संकल्पना क्या है, चेतना का स्तर मतलब क्या है, सबसे नीचे का स्तर जो है उसको प्राणमय कोश कहते हैं. प्राणमय कोश मतलब व्यक्ति मैं मेरे जीवन को कैसे बरकरार रखता हूं उसके बारे में चिंता होती है. कोई खतरा होगा किसी को, अगर मान लीजिए हम भूखे हैं, खाना भी खा रहे हैं, हमको पता चलता है कोई हमको मारने के लिए आ रहा है, तो खाना छोड़ो भागो भी. पहले अगर जिंदा रहेंगे तो बाद में खाना वापस खा सकते हैं. तो क्या है तो सबसे पहले प्राणमय कोश होता है, मेरे प्राण को बचा के रखना है. पर प्राणमय के बाद क्या है कि अन्न खाना है. अन्नमय कोश मतलब क्या है, अन्नमय कोश में हम अन्न के, हम केवल अन्न से शरीर की पुष्टि के नहीं खाते, अन्न से हम आनंद भी अनुभव करते हैं. इसीलिए कुकिंग इतना बड़ा एक कला होती है. तो अन्नमय कोश में हम, कोई व्यक्ति अन्नमय कोश में होगा तो कोई कमरे में आएगा, सबसे वो देखेगा नहीं कमरे में यहाँ पे एक मंदिर है, किताब है, यहाँ पे खाना कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, जाके खाना है. तो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश, फिर अन्नमय कोश. इसके बाद में कभी कभी ये नाम अलग अलग होते हैं पर हम संकल्पना समझने का प्रयास करें. उसमें कहा मनोमय कोश है, मन के स्तर पे व्यक्ति जो खाने से ज्यादा भावनाओं के स्तर पे होता है. मान लीजिए अगर हम कुछ स्वादिष्ट अन्न खा रहे हैं पर तभी हमें कुछ बहुत दुखदायक खबर मिल जाती है तो क्या होगा, तभी खाने की इच्छा चल जाएगी. मान लीजिए हम किसी से बहुत स्नेह करते हैं, उनको बड़ा बड़ा उनका कोई अपघात दुर्घटना हो गई है और वो अभी मृत्यु की शैया पे, तो भी क्या कहूं. तो क्या है, वो भावनाओं के अनुभव जो होता है वो संवेदनाओं से अधिक तीव्र होता है. तो जब व्यक्ति मनोमय कोश में होता है तो विचार भावनाएं इस तरह होता है, अधिकांश भावनाओं के स्तर पर होता है. तो आजकल के लोगों में मन की बहुत समस्या आ रही है. तो क्या अधिकांश लोग वो मन के स्तर पे है और मन में बहुत समस्या आ रही है, तो उसके ऊपर है ज्ञानमय कोश. या कुछ कुछ इसके नाम अलग अलग होते हैं पर संकल्पना है. उससे क्या है, मन के ऊपर बुद्धि होती है, तो फिर उस तरह व्यक्ति विचार करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है. मैं ये सारे में मैं अन्न खा रहा हूं, मेरा प्राण को बरकरार रख रहा हूं, अच्छी भावनाओं का अनुभव करना चाहता हूं, बुरी भावनाओं से दूर रहना चाहता हूं, ये सब कर क्यों रहा हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, सबका अंत तो मृत्यु में होने वाला है, तो मृत्यु के परे कुछ है. ये जो है ये स्तर जो है ये वास्तव में आध्यात्मिक प्रकृति का स्तर है. तो मनोमय, तो जो अन्नमय और प्राणमय स्तर में अधिकांश रूप से सब जानवर रहते हैं, थोड़ा सा मनमय होता है उनमें, पर ज्ञानमय की क्षमता केवल मानव में होती है. और ज्ञानमय के परे है आनंदमय, और आनंदमय स्तर में क्या होता है, आनंदमय स्तर में हम न केवल समझते हैं कि मैं एक आध्यात्मिक जीव हूं पर एक परम सत्य, परम आध्यात्मिक सत्य भी है, और उनसे संबंध जोड़ना, और उस परम सत्य के प्रेम में आप लालित होना, यह जीवन का परम उद्देश्य है। तो दिव्य आनंद की अनुभूति है, एक भौतिक आनंद नहीं, शारीरिक आनंद नहीं, दिव्य आनंद की अनुभूति है। तो वो जो है आनंदमय कोश है। तो हमारी जितना अलग अलग स्तर पे हो सकती है, उन अलग अलग स्तरों से चेतना को आनंदमय कोश तक लेके जाना, यह हम सबकी चुनौती है। और आध्यात्मिक प्रगति करना मतलब वह चेतना जहां भी है उससे आनंदमय कोश तक उसे ले जाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की, श्री कार्तिक महात्य की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।